इसलिए मैं इस नाटका को प्रस्तुत करने वाले करने वाली बेटी पूनम को मेरा स्नेहाल आशीर्वाद है। और इसके अभिनेता बहुत सुंदर ढंग से इस कथानक को प्रस्तुत किया, जिसमें कृष्ण श्रीमती राधिका, ललिता विशाखा, चंद्रा पद्मा का अभिनय और कथन भी बहुत सुंदर हुआ, इसलिए उनको भी हमारा स्नेहाशीर्वाद है। परंतु एक बात है, जिन्होंने नाटक को अभिनय किया, जिन्होंने नाटिका को प्रस्तुत किया और जिन लोगों ने देखा, ब्रज का ऐसा प्रेम पाने के लिए साधन कर देश विदेश में मैं इसी वाणी का प्रचार कर रहा हूं, इसी प्रेम का, प्रेम के आधार पर विश्व सारा टिका हुआ है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, यह समझो, प्रेम केवल देता है। राधिका इत्यादि का जो प्रेम है कृष्ण से, वो कुछ नहीं चाहते, बस देना चाहते हैं अपना सर्वस्व, ये प्रेम है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद में बोलूंगा, अभी इन बालिकाओं को मेरा बार बार स्नेह आशीर्वाद है।
गोकुलमाला का रोल किया
अभी गोकुलमाला सुख, अभी रामचंद्र जी कुछ प्रस्तुत करेंगे।
पहले तो अधिक भीड़ देखेंगे,
अच्छा होता कि आप लोग यहाँ आ जाए।
अब आप लोग स्टेज पे भी बैठ सकते हैं, इसको बैठने वाली जगह बना लें, ड्रामा समाप्त हो गया।
स्टेज में जाके बता दीजिए, राम जी स्टेज में जाके बता दीजिए।
अज्ञान अंतिम पर्यंत
10-10 मिनट में वक्तव्य समाप्त करना होगा।
अज्ञान अंतिमृंदस्य ज्ञानंजन शिलाकिया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति विलास नारायण गोस्वामी इति नाम्ने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एकजा अतीतानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुरसरि गौर भक्तवृंदा, बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज का चार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनोद नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग आज जिस उपलक्ष में यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही मंगलकारी एवं शुभ कल्याणकारी उपलक्ष है। श्री गुरुदेव करुणा के सागर, उन्होंने सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित प्रसारित गौड़िया धारा की भक्ति का झंडा लहराया और आज 90 वर्ष की आयु में भी अथक प्रयास में क्या देशी क्या विदेशी
आप समझ नहीं सकते हैं, 30 दिन से ज्यादा गुरुदेव का एक जगह स्थान पर बैठना नहीं हो रहा है। डॉक्टर हार गए हैं, माधव महाराज थक गए, लेकिन गुरुदेव का विश्व में प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी प्रचार प्रसार का सिलसिला ये श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ, श्री गुरुदेव का लगाया हुआ पौधा जनकपुरी में आज ये खिलकर अपने फल और फूल लोगों को प्रदान कर रहा है। और उसी के वार्षिक महोत्सव, आज मैं आपको याद दिला दूं, 1999 में हमने समिति बनाई, सोसाइटी बनाई, 2001 में हमें ये जमीन मिली और 2003 में हमने बेसमेंट में छोटे वाले ठाकुर जी उत्सव विग्रह स्थापित किए, प्राकट्य महोत्सव, और 2003 से मेहनत करके 2007 में हमारे यहाँ के ठाकुर जी श्री राधा रमन बिहारी जी ऊपर के मंदिर में आके स्थापित हुए, और आज 2009 है। और इस तरह से आप देखिए ठाकुर जी किस तरह से अपनी लीलाओं को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं, श्री गुरुदेव का ही प्रयास है ताकि हम लोग उठे, सोए ना रहे, माया की नींद में जागृत हो जाए। हम लोगों को जगाने के लिए श्री गुरुदेव का ये कार्यक्रम है, वन मैन शो, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ का प्राकट्य महोत्सव एनिवर्सरी, उनका सालाना फंक्शन। ये बहुत ही समझने जैसी बात है, छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया और उसके माँ बाप इतने क्रोधित हुए, डंडा पकड़ के कुत्ते को मार मार के उसको वहीं मार डाला, तूने हमारे बच्चे को क्यों काटा है। लेकिन एक दूसरे ही मोहल्ले में किसी गली के कुत्ते ने नहीं, किसी पालतू कुत्ते ने काट लिया, और उस घर के मालिक जितने भी थे, बच्चे के माता पिता, उस मालिक के पास गए, कुत्ते को नहीं मारा क्योंकि उस कुत्ते को के गले में पटा था और वो पालतू था। बस इतना ही फर्क आ जाता है। हम भी इसी तरह के लोग हैं, अगर हम अपने किसी सौभाग्य से गुरु के पास आ जाए और उनके पालतू कुत्ता हो जाए, तो अगर हम किसी को काट भी लेंगे तो वो हमें मारेगा नहीं, हम बच जाएंगे। और अगर हम गली के कुत्ते बने रहते हैं, किसी की शरण नहीं लेते हैं, कोई गोड़िया मठ का पट्टा गले में नहीं बांधते हैं, तो हम फालतू कुत्ते होते हैं। अगर हमने काट लिया तो पिटाई कर करके हमें मार दिया जाएगा। तो रमन बिहारी गोड़िया मठ अभी हमको फालतू कुत्ता बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। हम सब लोग आए और इस संसार के डंडों से बचना है तो आइए गले में ये पट्टा बांधे और गुरु महाराज जी की शरण ले। यही रमन बिहारी जी के इस एनिवर्सरी में आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ।
ओम ज्ञान कमीरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुः मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी त्रिदंडी स्वामी और वैष्णव और वैष्णवी, उन सबके चरणों प्रणाम। अभी बहुत सुंदर हमने एक ड्रामा देखा है और गुरुदेव ने उस प्रेम की बात करी है, और हमारे इस मठ मंदिर का लक्ष्य यही है कि उस प्रेम की प्राप्ति हो। इसीलिए हम इसको बढ़ चढ़ के इस सालाना प्रोग्राम को करते हैं कि हमारे गौड़िया संप्रदाय का जो लक्ष्य सामने आना चाहिए। गुरुदेव ने तो बड़े ही आसान शब्दों में उस प्रेम का नाम ले लिया, और लगता है कि जैसे गुरुदेव उस प्रेम का नाम लेते हैं तो कुछ हृदय में लगता है कि बड़े आसान हो जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन उसको पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सुंदर बच्चों ने ये ड्रामा जो किया है, हमारे कृष्णदास कविराज महाराज उस प्रेम और काम के बारे में बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति की इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। कहते भाई अपनी इंद्रियों को इस शरीर को तृप्त करने का नाम काम है, इस तरह से भी जब ये शरीर को तृप्त करने का नाम काम है और कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने का नाम प्रेम है। कहते ये तो बड़ा आसान है। फिर उन्होंने आगे बोला, काम प्रेम दो कारा विभिन्न लक्षणा लहुआ आरा हेमा यची स्वरूप विलक्षणा। कहते भाई इसको आसान मत समझो, उस प्रेम और काम में जमीन आसमान का फर्क है। काम प्रेम दोनों का राग, इन दोनों का बहुत विभिन्न लक्षण है, एक है लोहा और दूसरा है सोना, बहुत फर्क है। और जो ये हमारे इस शरीर का प्रेम है उसको हम प्रेम समझे बैठे हैं, इस ऊंचे ड्रामे को समझने के लिए मुझे कितने जन्म लगेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं। अगर हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं तो उस प्रेम को किस जन्म में मैं प्राप्त करूंगा मुझे अभी भी पक्का यकीन है कि हमें मिलेगा। गुरुदेव के खुद के अपने शब्द, एक सुबह गोवर्धन पे जब हम जा रहे थे तो उन्होंने सीधा मुझे उनके बोला, इदम शरीरम परिणाम पिशलम। और मैंने जल्दी से जाकर उस श्लोक को रख लिया। गुरुदेव ने कहा कि जिस शरीर से हम इतना प्रेम कर रहे हैं ये हाथ से फिसलने वाला है। इदम शरीरम परिणाम पिशलम पतति अवश्यम शतसंधि झर झरम। ओ पहले हम इस शरीर को समझे कि ये शतसंधि, बहुत सारी इसमें संधियां हैं, जोड़ हैं, और झर झरम समय आने पे ये निकल जाएगा हाथ से, ये रुकने वाला नहीं है। हमने इस तो इतना प्रेम करा हुआ है, जिसको हम प्रेम समझे बैठे हैं, परिवार बना बैठे हैं, इतना बड़ा संसार चला रहे हैं, ये वो प्रेम की बात नहीं है जो गुरुदेव कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची बात है, किस जन्म में समझ आएगी। गुरुदेव के ये शब्द, पद्धति अवश्यम ये गिरने वाला है अवश्य, जितने बड़े बड़े हमने किले बना के उसमें रह रहे हैं, उसके परिवार और फिर परिवार में आगे आते हुए बच्चे और फिर पोते, हमने ये देखा है कि आदमी भूल जाता है उसका आता हुआ बुढ़ापा, वो चलना बंद कर देता है लेकिन अपने पोते को खिला के बड़ा खुश रहता है, ये वो प्रेम की बात नहीं है, ये हमारे शरीर से उत्पन्न इस इंद्रियों को तृप्त करने की बात है। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी ये नहीं मिल सकता। आज अगर हमारा इस सालाना अवसर को मनाने का जो बात है, अगर हम इसको समझेंगे तो ही इतने बड़े उत्सव का फायदा है, वरना हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बड़ी ही कठोर और कठिन वाणी बोलते हैं कि उन्होंने 64 मठ बनाए और उन्होंने कहा कि ये मठ मंदिर के सारे संगमरमर सब कुछ बेच दूंगा अगर मैं एक शुद्ध भक्त अर्थात इस संसार की भोग वृत्ति से एक शुद्ध भक्त को पैदा कर सकूं तो मेरा जितने भी मठ मैंने बनाए हैं सफल हो जाएंगे। ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा जिन्होंने 64 मठ बनाए। इमोशनिंग वो बहुत अरमास कर रहे हैं दुनिया इस बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कई हजारों साल पहले कही है, तो आज वही श्लोक जो गुरुदेव ने मुझे कहा कई साल हजारों साल पहले की काफी बड़ी पुरानी बातें हैं। आगे सुनिए, इमोशनिंग ओ बहुत आगे बढ़ गया है मेडिकल साइंस, तो तू तो बहुत औषधि ले सकता है, बच जाएगा। इमोशनिंग ये शास्त्र हमें पूछ रहे हैं, शरीर से प्रेम कर रहा है किस औषधि पे विश्वास करता है, कब तक बचेगा। इमोशनिंग मूड मटे ये वो पागल, किस कौन सी दवाई तेरे को बचा पाएगी, कोई नहीं, निरामयम कृष्ण रसायन पिबा। ओ एक दवाई हमारे गुरुदेव देने आए हैं, आइए और पी लीजिए, इसी को ही बांटने के लिए हम मठ और मंदिर बनाते हैं, यही रस है कृष्ण रस। जब तक ये किसी शुद्ध वैष्णव के अनुगत में नहीं लिया जाएगा, कि हम हजार बोल दें कि हमें कृष्ण प्रेम मिल गया, ये मिलने वाला नहीं है जब तक हम इस शरीर को छोड़ के संतों की कृपा में नहीं रहेंगे। गुरुदेव हमेशा मुझे दो शब्द के लिए बोलते हैं तो मैं जल्दी में रहता हूँ, फिर भी मैं दो शब्द से ज्यादा बोल गया हूँ, गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे, वही गुरु संतों की वाणी को मैंने अभी बोला है।
अपने शिक्षा गुरु नित्रिला प्रविष्ट अपने शिक्षा गुरु नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने अतिशय प्रिय शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति करते कृष्ण कृपा की वांछा सभी चतुर्थी बार गुरु वैष्णव वैष्णव सभी के दर्शन में यथा योग्य अभी गुरुजी 5 मिनट के लिए अपने रूम के बाहर आए थे और मैंने गुरुदेव से एक बात बोली कि आप क्या आनंद बांट रहे हो, क्या इस संसार में कोई इसकी कल्पना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अभी अभी हमारी कार्तिक मास की परिक्रमा में सभी देश विदेश के भक्त लोग आए हुए थे और गुरुदेव सबको ही किसी को स्नेह पूर्वक, किसी को प्रेम पूर्वक, किसी को डांट के, किसी को धमका करके परिक्रमा में आने के लिए बोलते हैं। मैं पहले दिन लेट हो गया, गुरुदेव ने बोला तेरी निष्ठा में कमी आ गई। दूसरी बार गया तो बोला गुरुदेव ने तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ सकता। दिल्ली में रहा कुछ देर, सारे कांपते रहे, क्या होगा क्या होगा, भाग दौड़ करता रहा। 30 दिन तो नहीं रहा लेकिन कुछ दिन गया। प्रेम एक क्या चीज है, ये प्रेम कैसा आनंद है? ये वास्तव में अभी गुरुदेव ने बताया कि ये सारे जगत का कारण प्रेम ही है, लेकिन इतना प्रेम शब्द को श्रवण करा है, अनुभव तो नहीं है, लेकिन इस प्रेम को बांटने वाले गुरुदेव महाराज वो खुद क्या आनंदमय है, उनका स्वरूप किस आनंद अवस्था में मग्न रहता है। लेकिन हम इस संसार में बोलते हैं कि यहां पर प्रेम नहीं है, ये संसार नाशवान है, तो फिर ये गुरुदेव उस आनंद मग्न अवस्था में इस संसार में हम लोगों से कैसे बातें करते हैं? जो उस प्रेम में डूबा रहता हो उसको इस संसार की कैसे होश रहती है? बोलते हैं वो प्रेम में ही रहते हैं और सभी जीवों के अंदर, क्योंकि सभी जीव कृष्ण के प्रति एक प्रेम की पोटेंसी रखते हैं, एक प्रेम की पात्रता रखते हैं। गुरुदेव सभी में केवल उसी प्रेम को ही देखते हैं और इसीलिए सबसे बात भी करते हैं। और इस चीज का क्या प्रमाण है कि पूरे विश्व में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे मुसलमान है, अंग्रेज है, ईसाई है, गुरुदेव की नजरों में कोई भेद नहीं है और गुरुदेव सबको क्या देखते हैं, ये सब कृष्ण को ही प्रेम करने वाले हैं। तो यही एक पहचान है। हम लोग देखते हैं कि गुरुदेव वाकई में ही ये वो एक आनंद प्रेम की एक मग्न अवस्था में ही इस संसार में केवल एक गुरुदेव ही एक ऐसी वस्तु है जिनका हम लोग अभी कह तो रहे दर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। बस प्रमाण तो यही है कि इस प्रेम मग्न अवस्था में सबको ही गले लगा रहे हैं, क्योंकि एक प्रेमी ही ऐसा कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। और गुरुदेव के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूं, लोग भी आप ही लगा रहे हैं और बस आशा यही है आप ही अनुभव कराएं, ऐसी इच्छा करते हुए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं।
उनकी बातें बहुत गंभीर हैं, समझना भी कठिन है।
मैं इनको विशेष धन्यवाद देता हूँ
आपके विचारों के लिए। जीव मात्र में प्रेम की पोटेंसी है, यह समझना टेढ़ी खेल है। बहुत अच्छा। तो राधानाथ, श्रीमान राधानाथ जी कुछ बोले।
हाथ में तो देख लो।
राधिकाय कलाय कृष्णाय कृष्णचक्राय सदभक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोजन पूरी गर्दन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश ज्ञान विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण सरोज मेहनत को लिखित प्रणाम। उपस्थित सन्यासीगण वैष्णवजन वैष्णव सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीमन महाप्रभु के जो मनोभीष्ट है उसी को पूरा करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी इस धराधाम पर पधारे और उसी उन्हीं रूप गोस्वामी पाद जी के परंपरा में रूप गोस्वामी के अनुग्रूप अनुप हमारे गुरु महाराज उन्होंने हमें लगता है कि एक रमन बिहारी गौड़िया मठ यहाँ पर स्थापित किया, लेकिन गुरु जी का उद्देश्य एक मठ को स्थापित करना नहीं। गुरु जी का उद्देश्य हर जीव मात्र के हृदय को एक सुंदर निकुंज बनाकर बनाना है जिसमें रमन बिहारी जी सदा नित्य अपना लीला प्रकाश करें। और ये प्रेम का चर्चा किया गुरु महाराज ने, मैं तो बहुत छोटा सा भी छात्र हूँ इसी परंपरा में इसी धारा में छात्र होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गंगा जी की जो पूजा है वो गंगा जल से ही की जाती है, तो मैंने जो गुरु महाराज से या गुरु महाराज के आशीष भक्तों से सुना उसमें से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम की प्राप्ति है, ये प्रेम की प्राप्ति को श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने एक उदाहरण से समझाने का हम लोगों को प्रयास किया। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि ये जो पीपल का जो वृक्ष है इसका अगर कोई बीज लेकर के अगर इसको रोपित करे तो उसमें पीपल का वृक्ष कभी नहीं निकलने वाला, कभी पीपल अंकुरित नहीं हो सकता। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पीपल का जो बीज है उसको एक पक्षी जिसके पेट में एक विशेष रस होता है वो पक्षी उसको खाता है और वो बीज जो बीज है उस पक्षी के दीर्घ के साथ जब बाहर निकलता है तब उसमें अंकुरित होता है। तब वो देखते हैं कि वही पीपल जो हमने अनुकूल भूमि में बीज बोने का प्रयास किया वो अंकुरित नहीं हुआ, फिर वो छत पे पत्थर में कहीं भी वो आ जाता। आप देखे होंगे कभी छत में पत्थर में पहाड़ में वो जो पीपल है वो आ जाता है। ऐसे ये जो प्रेम है ये गुरु जी के मुख से अगर हम हरी कथा सुनेंगे तो यही साधु रूपी वो पक्षी है जिसके हृदय में वो प्रेम रूपी रस है और वो कथाओं को जब वो प्रेम में झिड़ो झिड़ो करके हमारे को सुनाते हैं तो हमारे कानों से होता हुआ, तो वो हरी कथाएं जो है प्रेम में जो भीगी हुई हरी कथाएं हैं वो हमारे कानों से होती नहीं, एक कान से आकर दूसरे कान से निकलती नहीं बल्कि हमारे हृदय में थोड़ा मोड़ा प्रवेश करती हैं। और ये जो परिक्रमाओं में गुरु जी हमको बुलाते हैं, गुरु जी कई बार कई बहाना दे दे करके हमको बुलाते हैं, ये ब्रजमंडल परिक्रमा और नवद्वीप परिक्रमा ये बहाना है कि परिक्रमा होगी घूमेंगे फिरेंगे ये प्रसाद होगा, लेकिन असली उद्देश्य ये प्रेम रूपी जो हरी कथाएं हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा ब्रज स्थापित करना यही हमारे श्रील गुरु महाराज जी का उद्देश्य है। तो अगर हम अपने गुरु महाराज को देखो दुनिया में अगर हमने किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते कितना भी हम प्रयास करें अपना जीवन भी दे दें तब भी हम अपने संतान को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़े से प्रयास से श्रील गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और कि अगर हमने दुनिया को प्रसन्न कर लिया और गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो हमारी उपलब्धि जीरो है। और अगर हमारी दुनिया पूरे दुश्मन हो जाए लेकिन हमने ऐसे गुरुपाद बाबू को अगर प्रसन्न कर लिया तो हमारी सारी उपलब्धि उसमें हो जाती है, उससे हमारे को अलग से उपलब्धि की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज को हमसे कोई कार्य नहीं चाहिए, कोई किसी का पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर हम गुरु महाराज जी को देते तो अपने ही कल्याण के लिए देते हैं, क्योंकि गुरु जी उसको सेवा में लगाते हैं, उससे हमारा ही कल्याण होता है, हमारा कल्याण बढ़ता है। हम अगर अपने हृदय को सुंदर निकुंज बनाए गुरु महाराज जी की कथाओं सुन करके, और गुरु महाराज जी के जो आश्रित भक्त हैं उनकी कथाओं को श्रवण करके निकुंज बनाए, जहाँ श्री राधा गोविंद जी हमेशा के लिए निवास करें, तो हम अपने गुरु महाराज जी को सहज रूप में बड़े आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं। कोई इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। ये ब्रह्मांड में घूमते घूमते हम सोचते हैं भगवान की कृपा है, गाड़ी होगी भगवान की कृपा, फैक्ट्री होगी भगवान की कृपा, बेटा अगर पायलट बन गया अच्छी पोस्ट पे चल गया तो भगवान की कृपा ना, ये भगवान की कृपा नहीं है। अगर कृपा है तो बहुत थोड़ी कृपा है। भगवान जिस जीव पर पूरी की पूरी कृपा कर देते हैं, जब उनके पास कृपा बचती नहीं थी कृपा उन्हें देते हैं, तो ऐसे सदगुरु से वो मिलते भगवान के पास जब कृपा समाप्त हो जाती है अपनी पूरी कृपा मिला करके, ऐसे सदगुरु महाराज से मिला देते हैं। और ये सदगुरु शास्त्र ग्रंथ को कहते हैं कि ये भक्ति लता बीज आरोपित करते हैं, नहीं भक्ति लता बीज आरोपित भी करते हैं, उसका पोषण भी करते हैं और उसका बचाव भी करते हैं, और समय आने पर वही लता जो है वो फलीभूत होती है, उसको समय आने पर फूल लगता है और समय आने पर फिर प्रेम का फल लगता है। बिताई बोल प्रेम
सर्वप्रथम अस्मदीय परमानंदतम गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद अष्टूर्धशतस्यश्रीमद्भक्तिवेदान्तस्य तदीय चरण युगल में असंख्य कोटि चक्रवर्त प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय सन्यासी जन, समस्त वैष्णव जन, सज्जन मंडली, माताएं बहनों भाइयों सभी को मेरा प्रणाम विदा। आज बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी सभी वक्ताओं ने बड़े सुंदर रूप से व्यक्त किया। इस संसार में गुरुजी का जो महादान है प्रेम का संदेश, भगवान श्री कृष्ण गुरु बिहारी होकर इस प्रजभूमि में अवतरित और लीलाओं को माधुरी को प्रकाशित किया, उस लीला चमत्कारिता के द्वारा सभी भक्त जनों को अपनाया और प्रेम का किया और उनके प्रेम रस का आस्वादन किया। जो भगवान वेदांत के रसो वही से रस स्वरूप परम आनंद स्वरूप परम रसमय है, ऐसी रसमय भगवान भक्तों का प्रेम आस्वादन करके अपने को गर्व मानते और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए न केवल ब्रजभूमि ही रही मथुरा में, मथुरा से द्वारका और इसी तरह से लीलाएं करते हुए उस अपूर्ण भाव को फिर से आस्वादन करने के लिए जो स्वयं गौरहरी बन करके आए श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए और विश्व जीव को उन्होंने प्रेम का संदेश दिया और उस प्रेम की धारा में आज गुरु जी जो विश्व जगत को जो सर्वत्र जन जन में जनमानस में उस प्रेम का संदेश पहुंचाने का जो अखंड प्रयास कर रहे हैं। इस प्रेम के विषय में अभी अभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि प्रेम का स्वभाव क्या है, प्रेम की रीति क्या है, प्रेम को कैसे पहचाने, किसे प्रेम कहे, जो कि अभी अभी आपने श्रवण किया है कि काम और प्रेम दोनों ही भिन्न हैं, दोनों ही अलग हैं। जहाँ अपना सुख अपना स्वार्थ अपना मतलब देखा जाता है वहां पर काम होता है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम को अंधकारमय कहा गया है, प्रेम निर्मल सूर्य के समान, प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता है। प्रेम चाहता है प्रेमास्पद भजवाद श्री कृष्ण को हम कैसे प्रतिविधान करें, कैसे भी प्रसन्न हो। और वही प्रेम कृति भगवान भी ऐसे भक्तों के लिए चाहते हैं कि ऐसे भक्तों का कैसे हम प्रसन्न करें, उनको हम खुश करें। ऐसे भक्त भगवान का जहाँ मधुर संबंध, जहाँ निस्वार्थ भाव है, जहाँ एक दूसरों को प्रीति करने के लिए प्रयास है, चेष्टा है, वहां पर प्रेम। इसी प्रेम को देने के लिए गुरु जी का आगमन है, जो कि संसार में हम कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, कितने कितने मार्ग में भटक रहे हैं। कर्म करते करते हम इतने जड़ बन जाते हैं, हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, मन मैलेपन में आ जाता है, इंद्रियां विवश हो जाती हैं, बाल पौगंड कैशोर जुवा प्रौढ़ वार्धक्य दशा को हम प्राप्त कर रहे हैं। कितने जन्म हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम मर मिट रहे हैं कर्म में। कर्म करते करते हमें जड़ता के अतिरिक्त कभी आनंद नहीं मिला, कभी वो प्रेम नहीं मिला, कभी खुशहाली नहीं मिली, सभी कुछ चलता चला गया। और ज्ञान मार्ग में जब हम जा रहे हैं, स्वहम मार्ग में, अहंकार अभिमान में भरपूर हो करके अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म बनने को जा रहे हैं, तो हमारा हृदय जलता जा रहा है, सुन्न होता चला गया, जल करके राज बन गया, ऐसे ज्ञान मार्ग। और योग मार्ग में जहाँ अपनी सत्ता का भी विनाश हो जाए, ऐसा एक योग मार्ग जो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया, ये ज्ञान मार्ग अजगर सांप की भांति और कहीं निगलने जैसे भीमरुल बरौली ये कीड़े होते हैं, इसी तरह से काटने वाले जहरीला है और निगलने वाला है, हमारा जीवन का ही सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग एकमात्र खुला हुआ है, जिसमें सरल हृदय से अपनी निष्कपट भक्त प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी जो विशुद्ध भक्ति, यही भक्ति का मार्ग ही प्रेम का मार्ग है। जिस प्रेम के मार्ग में चलने से हृदय आनंद में भरपूर होता है, भक्त भगवान का मधुर संबंध बनता है, हृदय उल्लसित होता है, जीवन सार्थक होता है। इसलिए इस समस्त सभी शास्त्रों में, वेद से लेकर के पुराण इतिहास सभी शास्त्रों में एक ही बातें कही, जो गुरु जी ने इसको सुनाया और गुरु जी दान कर रहे हैं। देखिए हम लोग आए हैं रमण बिहारी गौड़ीय मठ में, जो अभी अभी आपने श्रवण किया है, रमण बिहारी भजवास श्री कृष्ण जो राधा रमण है, राधा जी के साथ उनकी जो दिव्य लीला माधुरी है हमारे हृदय में प्रकाशित हूँ। केवल एक मंदिर नहीं, गुरु जी क्या चाह रहे हैं, हम सबका हृदय मंदिर बने, सबका हृदय रमण बिहारी गौड़ीय मठ बने। अभी गौड़ीय शब्द से क्या पता लगता है, गौड़ीय क्यों कहा जाता है, जो गौड़ देश में जन्म लिए हैं, ऐसे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस प्रेम का संदेश दिया, इसलिए उनके अनुयायियों को गौड़ीय कहलाता है। इस भारत वर्ष को हम लोगों ने गुरु जी से ही सुना, जबकि पंजाब, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी से पंजाब का एक भाग सतलज का ये गौड़ होता है, सतलज से दिल्ली की जमुना तक दूसरा गौड़ होता है, और दिल्ली की जमुना से इलाहाबाद के प्रयाग तक गंगा का ये तीसरा गौड़ होता है, और प्रयाग के गंगा से बिहार के सोनभद्र तक चौथा गौड़ होता है, और जो कि सोनभद्र से लेकर के बंगाल के पद्मा नदी तक पांचवा गौड़ होता है। तो हम लोग गौड़ देश के निवासी, परंतु हम लोग इसलिए गौड़ीय हैं जो हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, और देखिए हम लोग गौड़ देश के निवासी, हम गौड़ीय हैं। और दूसरी बात है, कोई कृष्ण का भजन करने वाला कार्ष्ण होता है, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है, सिद्धि की उपासना करने वालों को शैव कहलाता है, जो राधा जी की उपासना करता है उनको गौड़ीय कहलाता है। अब देखिए अभी अभी कार्तिक व्रत समाप्त हुआ, सभी ने कार्तिक व्रत का यथाचर पालन भी किया, और कोई ब्रजमंडल में आए कोई नहीं आ पाए। परंतु तो यह कार्तिक व्रत का दूसरा नाम है ऊर्जा व्रत। आपने सुना है जितना भी ये परमाणु को क्या कहा जा रहा है, परमाणु संयंत्र आदि, ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा परमाणु बनाए जा रहे हैं जिससे बिजली पानी और सभी कुछ मिल रहा है ऊर्जा। ये ऊर्जा का दूसरा नाम है शक्ति। परंतु ऊर्जा व्रत हम कर रहे हैं, ये समस्त ऊर्जा का स्रोत और खान जो है ये क्या है, जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति अंतरंगा हलादनी स्वरूप शक्ति कौन राधारानी है। यही राधारानी जो है ऊर्जा शक्ति है। हम उन्हीं का व्रत करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। समस्त ऊर्जा शक्ति का मूल पावर वही है राधा जी। यदि हमारे पास शक्ति हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे धन नहीं है तो गरीब है, एकदम कुछ भी नहीं है तो क्या कर पाएंगे। मन में हजारों चिंताएं हैं पर कोई सफल नहीं होता है धन तो उससे होता है। तो इसी तरह से ये तो चंचला लक्ष्मी है, किंतु वास्तविक जो नित्य पराशक्ति है उस शक्ति का कुछ अंश हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, पावर आ जाए, तो हम परब्रह्म भगवान की सेवा में और संसार के सभी वस्तु को कर कमल में कर सकते हैं। इतनी शक्ति है तो इसलिए ऊर्जा प्रति कहलाता है। तो ऊर्जा शरीर राधा रानी की हम आराधना करते हैं, उनके लिए ये व्रत ब्रजमंडल परिक्रमा जो अभी हुई है, जिसमें गुरु जी सभी का आवाहन करते हैं कि आप सभी लोग आइए परिक्रमा में। क्यों हम ब्रजमंडल के धूल कण को स्पर्श करेंगे, वहाँ के मिट्टियों में हम लौटेंगे तो जरूर हमें राधा जी की चरण धूल स्पर्श, जो वृंदावन धाम हमारे प्रति कृपा करेंगे, हमें वो शक्ति देंगे जिस शक्ति से हम परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित हो सकेंगे। यही हमारा जीवन है, यही हमारी भावना है और हमें इसी रास्ते में चलना है। अपने हृदय को कामना वासना से मुक्त करके हम निष्काम निष्कपट रूप से राधा कृष्ण की भक्ति में उन्हीं की सेवा में समर्पित हों। इसलिए गुरु जी का यही अवदान है जो इन्हीं सेवा में ही हम सबको उद्बुद्ध करने के लिए उनका प्रयास, उनकी चेष्टा, उनकी भावना है। इन्हीं कथाओं के साथ मैं अपना
चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णानुकृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। अभी अभी नाटका में भी प्रेम का ही अभिनय किया है। हमारे वक्ताओं में रामचंद्र जी, रोहिणी नंदन, संजय जी,
राधानाथ, तीरथ स्वामी,
अंत में तीरथ सर, लोगों को सुनने से मुझे ऐसा लगा जो हमसे अधिक वक्ता ये लोग हैं। मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता।
आप अकेला है, लोग अधिक है नंबर में।
बहुत अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे सब लोग भक्त हैं जो हमारा हमसे भी अधिक प्रचार करते हैं। मैं ऐसा ही चाहता हूँ और भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हमारी बेटियां भी ऐसे प्रस्तुत हों जो विश्व में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम मई वाणी को तुम लोग सभी लोग प्रचार कर सको। अभी प्रेम की बातें हो रही थी, प्रेम तो कुछ कुछ प्रहलाद महाराज जी भी करते हैं, उसे पढ़ करके अम्बरीश महाराज भी प्रेम करते हैं। प्रेम कहाँ से आरंभ होता है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपतम। कृष्ण की हमारे समस्त इंद्रियों से, वाणी से, कर्म से, क्रियाओं से, इसका अतीत मन की भावनाओं से,
कृष्ण की भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही हो, जिसमें किसी प्रकार की संसारी कामना वासना तनिक भी न हो। और वो भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई न हो, यही रूप गोस्वामी ने प्रेम प्राप्ति का साधन बतलाया। इसमें हम देखते हैं कि अभी बतलाया प्रहलाद महाराज जी का, उनसे अम्बरीश महाराज का, उनसे भी हनुमान जी का प्रेम और बहुत अधिक प्रेम तो विख्यात है हनुमान जी का प्रेम। और वो हनुमान से भी पांचों पांडवों का द्रौपदी का प्रेम और बहुत ऊंचा, और उनसे भी ऊंचा उद्धव जी का प्रेम। किंतु कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम अपनी प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, या ढाई अक्षर का ही प र और म प्रेम ढाई अक्षर का है। किंतु जो इस जगत में जन्म लेकर के प्रेम का वह पाठ पढ़ लिया वही धन्य है। अभी पांडवों से उद्धव जी, और उद्धव जी को कृष्ण ने कहा जिस पाठशाला में हमने प्रेम पढ़ा है उसी में जाओ, जहाँ की प्रिंसिपल राधा जी हैं, ललिता विशाखा इत्यादि ये सब एक एक विषय की एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं, वहाँ जाओ। उद्धव जी गए, उस प्रेम को नहीं समझ सके। उद्धव आए कृष्ण से बोले मैंने केवल देखा प्रोफेसरों को, किंतु उस प्रेम का एक बूंद भी हमारे हृदय में नहीं आया, नहीं तो मैं वृंदावन से गोपियों के पास से लौट करके यहाँ पर किस लिए आता। कृष्ण ने कहा जे ठीक कहते हो, मैंने मुझे भी मेरे अंदर भी प्रेम की वो जो ऊंचाई है स्तर है, उस प्रेम से हजारों गुण श्रीमती राधिका में प्रेम का स्थान। कृष्ण में महाभाव तत्व है, इसके आगे नहीं है। यहां पर मदनाक्षी इत्यादि भाव है, रूढ़ अधिरूढ़ इत्यादि, वो कृष्ण में नहीं। उनकी लालसा जगी राधा जी का वह प्रेम, हम तो जरा सीखें, तुमको दूसरा एक अवतार लेना पड़ा। और वहां पर विशाखा जी रामानंद बन करके आए थे, उनके पास में गोदावरी के तट पर पहुंचे और विशाखा जी से प्रश्न करके पूछा, और विशाखा जी ने वो प्रेम की परिपाटी उनको सिखलाई, सिखलाई नहीं, गंभीरा में जगन्नाथपुर में आकर के उनसे पूरा प्रेम का पाठ पढ़ाया। वो स्वरूप दामोदर, दामोदर जी ललिता जी हैं, स्वरूप दामोदर जी ललिता है ना, और विशाखा हैं ये लोग प्रेम का पाठ जान, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसका अनुभव करके जगत में कुछ इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी सर्वस्वामियों को, स्वरूप दामोदर राय रामानंद ये प्रधान सेनापति उनके हैं, उन लोगों ने जो विचार छोड़ा आज हम ही लोग उन्हीं के अनुगत्य में हमारे गुरु परंपरा से आकर के हम लोग उसको प्रचार करते हैं। यदि जीवन में सुखी रहना है, यदि शांति से रहना है, यदि कृष्ण प्रेम को पाना है, तो उस धारा में आकर के स्नान करो। जिन लोगों ने हरि नाम लिया है वह और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। संसार में केवल जीवन निर्वाह करने के लिए रहिए, कभी खबरदार आसक्त न होइए। आसक्त कृष्ण के और राधा जी के चरणों में आ सकते हैं, नहीं तो ये प्रेम नहीं मिल सकता। अभी रात अधिक हो गई है, आज यहीं पर अपना मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा। हमारा ये वार्षिक महोत्सव